मुखमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदानुये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेतु तं सर्वभूत मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जिघामि तया विना इति विख्याय तं नहि माम् अचरन्ति। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम शिष्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद शिष्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में कोटि कोटि बार साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के चरणों में भी दंडक प्रति ज्ञापन करता हूँ। हमारे प्यारे मेरे आदरणीय वैष्णव सन्यासियों ब्रह्मचारियों और हमारी बेटियों वैष्णव यथाजल अभिवादन करके श्रीमद्भागवत आरंभ कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अभी पिछले द्वापर में करीब करीब 5,500 वर्ष पहले इस पृथ्वी में अवतीर्ण होकर के अपने परिकरों के साथ मथुरा वृंदावन में जन्म लिया और गोकुल में बाल्य लीला वृंदावन और नंदगांव इत्यादि में गोवर्धन में किशोर लीला करके फिर मथुरा लौटकर कंस का और उसके साथी चारों मुष्टिक इत्यादि सबका वध किया, असुरों का भार हरण किया और तत्पश्चात द्वारका चले गए और वहां पर महाभारत युद्ध इत्यादि हुआ और तत्पश्चात और भी जो असुर पृथ्वी का भार थे अत्याचार करने वाले थे उन सब का विनाश कर धर्म की संस्थापना की। उनके चले जाने के कुछ ही दिन बाद कलयुग ने पृथ्वी पर प्रवेश किया। उस समय पांचों पांडव ही नहीं थे, अभिमन्यु का लड़का महाराज परीक्षित उस समय उनके बदले राज्य कर रहे थे, उसी समय कलचुक ने प्रवेश किया। कलयुग में धर्म की बड़ी हानि होती है, स्त्रियां भी धर्म को छोड़ देती हैं, पुरुष लोग भी छोड़ देते हैं, यहां तक कि साधु संत लोग भी जो त्यागी हैं वो लोग भी अपने धर्म को छोड़कर विषय में फंस जाते हैं। तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट हो जाता है, वहां पर जैनों का अधिकार हो जाता है मुसलमानों का। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और अयोध्या काशी इत्यादि में मुसलमान अधिकार करके जन्म स्थान को भी अपवित्र कर देते हैं, गंगा जमुना को भी अपवित्र कर देते हैं। कलयुग में जो अधिक काल बजाने वाले डपोर संखी हैं, वही लोग साधु माने जाएंगे। इसी तरह से धर्म भ्रष्ट लोग वोट के बल पर राज्य करेंगे और इस प्रकार से जगत में अनाचार फैल जाएगा। बहुत से कम लोग भक्ति पथ पर रहेंगे। इसलिए साधु संत सब जो यथार्थ में थे वो डर गए, वे एकत्रित होकर के नैमिषारण्य में पहुंचे। उस समय नैमिषारण्य में सुखदेव गोस्वामी के शिष्य सुत गोस्वामी जी उग्र सभा सुत गोस्वामी जी शास्त्रों का दूसरों को श्रवण करा रहे थे, उनके उपदेश। उस समय में सुत गोस्वामी को उन्होंने प्रश्न किया और प्रश्न करके बोले कि आप समस्त शास्त्रों के वेत्ता हैं, जानने वाले हैं, विशेष करके आपने सुखदेव गोस्वामी से सब शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत श्रवण किया, उसके उपदेशों को श्रवण किया, महाभारत पुराण उपनिषद वेद सबका तात्पर्य आपको ज्ञान है, इसलिए हम लोगों का ये पूछना है कि कली काल आ गया है, उससे प्रभावित हुए बिना रहना बड़ा भारी कठिन है। कलयुग में लोगों की आयु बहुत थोड़ी रह जाती है, बहुत थोड़ी। उसमें भी तरह तरह के उपद्रव हैं, लोग विषयों में इतने फंस जाते हैं, इनको किसी चीज की धर्म इत्यादि का ज्ञान नहीं रहता, समय नहीं रहता, और इतना करके भी भाग्यहीन होते हैं, बड़े भारी भाग्यहीन। कैसे? प्रायेण अल्प आयुष शब्द कला युगस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। मंद भाग्य वाले और चाहते हैं अच्छा तो होगा बुरा, और तरह तरह के उपद्रव हैं। इसमें कलयुग में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लोग समझते हैं कि यही मेरा कर्तव्य है, भगवान का भजन करना, उनको जानना ये कर्तव्य नहीं ज्ञान होता। अतएव आप समस्त शास्त्रों का सार हमें बतलाइए, जे कलयुग से हमारी कैसे रक्षा हो सकेगी, और जयात्मा संप्रसिद्धति और हमारी आत्मा प्रसन्न रहे। शरीर का प्रसन्नता प्रसन्नता नहीं है, शरीर की प्रसन्नता से आत्मा नहीं प्रसन्न भी हो सकता है। शरीर तो मदिरा पान से व्यभिचार से प्रसन्न हो सकता है, मांस खाने से मछली खाने से, किंतु हम शरीर नहीं है, आत्मा है, वो कैसे प्रसन्न होगी, इसमें हम वर्णन करेंगे सब। कैसे आदमी यथार्थ में सुखी रह सकता है, श्रीमद् भागवत में ही बतलाया गया है। इसलिए आप कृपा करके हमें बतलाइए कि आत्मा कैसे सुप्रसन्न हो सकती है। सुनकर के बड़े बड़े प्रसन्न हुए और इसके उत्तर में बोले जे कैसे आत्मा प्रसन्न रह सकती है। आत्मा माने मैं, शरीर नहीं, कैसे प्रसन्न रह सकती है और उसका क्या कर्तव्य है, आप कृपा करके बतलाइए। सुनते ही सुत गोस्वामी अपने गुरु जी का प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया कि जन्मे होते ही जो अपने घर से निकले, पिता उसके पीछे पीछे चले, हा पुत्र तुम कहां जा रहे हो। और जिनका भी यज्ञोपयन यज्ञ उपनयन नहीं हुआ था, उपवीत नहीं हुआ था, जन्म का कोई संस्कार भी नहीं हुआ, जन्म लिया चल पड़े, माता का जो और सब संस्कार होता है पुत्र का वो भी कुछ नहीं हुआ, उसी अवस्था में निकल करके चल पड़े और व्यास जी पीछे पीछे दौड़े। और उसी समय में पेड़ों ने उत्तर दिया, कौन पुत्र, कौन पिता, कौन भैया, कौन भाई, कौन पिता, शरीर को तुम लोग समझ रहे हो, ये सब नहीं, पिता तो वही है, माता वही है, भाई बंधु वही है, जो जगत की सृष्टि करने वाले स्वयं भगवान कृष्ण है, उसी से सुख हो सकता है। इसलिए पुत्र पुत्र क्या कर रहे हो। इसके बाद में और भी स्तुति किया और आरंभ किया, बोले तुम लोगों ने पूछा यह प्रश्न बहुत सुंदर है कि आत्मा कैसे सुप्रसन्न हो सकती है। इसके लिए वो बोले सबई पुंसा परो धर्म जतो भक्ति रघोग कजे अहेतुक अप्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। बोले सबई पुंसा, मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र का एकमात्र परम धर्म है क्या, जो वचन मन और सबसे अतीत प्रभु हैं, जिनको जो इंद्रियों के पकड़ के ऊपर हैं, जिनको इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती, वो जो प्रभु हैं, कृष्ण हैं, उनके प्रति है क्योंकि बिना कुछ चाहे जगत के। और निरंतर जमयी तल धारावत अविच्छिन्न गति वाली, निरंतर दिन रात जो भक्ति होती है उसी से आत्मा प्रसन्न हो सकती है। फिर से समझो, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो पुरुषोत्तम है, सृष्टि के मूल कारण है, स्थिति प्रलय के, उनके प्रति बिना कारण रहित कोई संसारी कामना वासना नहीं, उनके प्रति अहेतु की बिना कारण वाली यदि भक्ति हो तो उसको कहते हैं उससे आत्मा सुप्रसन्न रह सकता। और कोई जगत में गति नहीं है। अब यहां पर थोड़ी सी व्याख्या आवश्यक है। भक्ति किसको कहते हैं, हम लोग जिसको साधारण रूप में भक्ति कहते हैं वो भक्ति नहीं है, तो वो क्या है, भक्ति की छाया है, भक्ति नहीं। उसी को हम थोड़ा सा डिफिनेशन के साथ में, मैं व्याख्या के साथ में बतला रहा हूं। यो तो शास्त्रों में, पौर शास्त्रों में कहा गया है भक्ति की परिभाषा, सब परानुरक्ति ईश्वरी, ईश्वर में, भगवान में परम अनुरक्ति का मना ही भक्ति है, और भी भक्ति निर्गुण है। तन मन वचन से भगवान को प्रसन्न करना भी भक्ति है, ये बात ठीक है, किंतु चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया, अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मार्जनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन, यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी ने महाप्रभु जी के कृपा से कहा। इससे ऊपर बढ़ करके पहले और आज भी इससे कोई सुंदर परिभाषा नहीं हो सकती है भक्ति की। इसकी हम व्याख्या करने से आप लोग समझेंगे और वैसा ही करने की चेष्टा करेंगे। भक्ति माने होता है सेवा, भक्ति माना भक्ति का शब्दार्थ होता है सेवा करना। वो सेवा कैसे होगी? अनुकूल रूप से कृष्ण का अनुशीलन करना। तात्पर्य क्या है? जिससे कृष्ण को प्रसन्नता हो किंतु प्रतिकूल भावना न हो और निरंतर होने वाली समस्त इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों का अतीत भावना के द्वारा जो कृष्ण की सेवा होती है उसको भक्ति कहते हैं। किंतु तब तक भी वह शुद्ध भक्ति नहीं है जब तक कि सांसारिक कामनाएं वासनाओं के लिए भगवान की सेवा की जाती है। जैसे ध्रुव ध्रुवजी थे, भक्ति की और भगवान का दर्शन पाया किंतु राज्य प्राप्ति के लिए किया, इसको भक्ति नहीं कहेंगे। यह भक्ति का एक तरह से शैड छाया है, उनकी भक्ति नहीं है। हम इसके विषय में और भी बतलाएंगे सब, पहले डेफिनेशन को बतला करके आगे चले। जैसे भगवान को प्रसन्न करना भक्ति है ये कहा गया, किंतु यशोदा जी की भक्ति कैसी है जो कृष्ण को का कान पकड़ करके ऐंठती हैं, कोखल में बांध देती हैं और वो परम कृष्ण रोता है, तो कृष्ण को रुलाने को कैसे भक्ति कहेंगे? तो ये भक्ति नहीं हुई। नहीं, कृष्ण को मारने की इच्छा से नहीं कर रही, ये लड़का हमारा बिगड़ जाएगा, अभी गुल्लकों के घर में मक्खन चुराता है और बड़ा हो जाने पर डकैत होगा ना क्या होगा, इसलिए अभी से उसको शासन। इसलिए यशोदा जी बीच बीच में शासन करते, किसी ने कह दिया यदि नारद इत्यादि ने, अरे ये परम ब्रह्म भगवान है, तो वो भगवान अपने घर में रहे, भगवान हमारे घर में बेटा के रूप में आया है तो हम उसको उचित शिक्षा देंगे, ये भक्ति है। और दूसरी तरफ में चारुण मुष्टि कृष्ण से युद्ध कर रहे हैं, कंस ने निमंत्रण दिया अक्रूर जाकर के, और कृष्ण बलदेव को किसी प्रकार से बहाने बना करके उनको लाओ यहां वृंदावन में, और ब्रजमंडल में हमने मारने की चेष्टा की कोई, किंतु लौटा नहीं, उतना नहीं लौटी, अगासुर बकासुर जितने भी राक्षस थे सबको भेजा उनको मारने के लिए, किंतु फिर वो लौट करके आए भी नहीं। ये संपादे जी वो क्या हुआ, इसलिए कृष्ण को वहां पर मारना बड़ा भारी कठिन है ब्रज में वृंदावन, इसलिए उचित है कि उनको बुला लाओ यहाँ किले के भीतर में, हम सब जितने हैं हमारे परिकर चारणों मुष्टिक और सब मिल करके और सभी लोग एक साथ में मारेंगे, नहीं तो उसको मारना बड़ा भारी कठिन है। एक बार वो कंस गोकुल में गया उतना के मारने के मरने के बाद में, तो वहां पर गया जब यमुना को पार करते ही एक बूढ़ी आ गई, बुढ़िया ने कहा कि बेटा तू कौन है, कहां जा रहा? तो उसने कहा कि मैं अपने की बात की भेद नहीं बताए, वो समझ गई, वो जोग माया पूर्णिमा जी थी, उसको छू दिया के और छूने से वो बूढ़ी बन गई, जो करी एकदम बूढ़ी, जैसे चलते हैं वैसे बन गई। और कहा जे गोबर का कंडा बनाओ, और बातों करके वो बनाने लगी, और जो ब्रज से आ रहे हैं सभी उसको अपने पैरों से मारते हैं। हाँ? क्या हाँ? यहां मार रहे, यहां मार रहे, कोई पैर से ठोकर मार रहा है, कोई कुछ, काफी दिन हो गए। और वो सोच रहा जी मेरी क्या गति हुई, तो उसने प्रतिज्ञा की जी अब मैं ब्रज में नहीं आऊंगा, कभी नहीं, इसलिए ऐसा करते ही जोग माया ने छोड़ दिया, अजय जाओ जमुना जी के उस पार न रहना, इधर मत आना। तब से कंस ये चीज उसको याद है, इसलिए नहीं जाता, कभी फिर गया है। इसलिए निमंत्रण दिया अक्रूर के द्वारा, अक्रूर जी उनको ले आए, कहा तुम्हारे मैया को, बाप को, जिन्होंने तुम्हारा जन्म दिया और उसको ये मार रहे हैं, कंस मार रहा है, और तुम जीवित हो, धिक्कार है तुम्हें, चलो, कह करके बहाने बना करके ले आया। उस समय चारण मुष्टिक को आदेश दिया कि इसको मार डालो। उस समय में विश्वभर में बड़े लंबे चौड़े पहलवान थे, दक्षिण भारत के रहने वाले। जब कृष्ण उससे लड़ना चाहा तो कृष्ण ने कहा हम तो अभी दूध मुंह बच्चे हैं, अभी तो 8-10 वर्ष की उम्र है, और तुमसे लड़ने के लिए तुम्हारे जैसे पहलवान होना चाहिए, हम बच्चे क्या तुमसे लड़ेंगे। पकड़ लिया, अरे तुमने किसको किसको मारा, अगासु बकासु, इधर आ जाओ, अपने बच्चों के साथ में खूब खेलता कूदता है। पकड़ लिया तो लड़ने लगे। उसमें चारों मुष्टिक उसका जान मारने के लिए, प्राण से मारने के लिए वो गुस्से मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं। और कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत दिनों के बाद में आज लड़ने का वीर रस प्राप्त हुआ, इसलिए बड़े आनंद। अच्छा, ये आनंद होना भक्ति है कि नहीं? ऐसा आनंद भक्ति नहीं है। मालूम होता है जो कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, किंतु ये भक्ति नहीं है। क्यों? अनुकूलेन, अनुकूल रूप में सेवा नहीं है। कृष्ण की प्रीति के लिए वो नहीं लड़ रहे, उनको मारने के लिए लड़ रहे, इसलिए भक्ति ऊपर की वृत्ति नहीं है, भीतर की वृत्ति है। इसलिए भगवान की सेवा के लिए जो सेवा करते हैं वो है। अभी हमने मथुरा में देखा कि हजारों आदमी शंकर जी के मंदिर में भीड़ करते हैं और उसके चौखटों को दबाते हैं। मैंने पूछा जी भाई ये चौखट क्यों दबाते हो, तो शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि हम 1 रुपए का बताशा चढ़ाएंगे, हमारी लड़की बीमार है, उसकी शादी नहीं हो रही है, उस लड़की की शादी हो जाए, हमारा लड़का फेल हो रहा है वो पास हो जाए, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए ये भक्ति नहीं है। भक्ति जैसा लगने पर वो 1000 पैर दबाए, 1000 चढ़ाए, 1000 कहा जी गोवर्धन जी आपको 1.25 मन का दूध चढ़ाएंगे, किस के लिए, उनको, उनके लिए ना, अपने लिए कर रहा, इसलिए ये सब भक्ति नहीं है। इसलिए ऊपर से वो दिखाई दे और न दे, भीतर से अपनी सारी इंद्रियों से, बाहरी और भीतरी, मन से, यहां तक कि आत्मा से, भावना से, भगवान की जो निरंतर सेवा होती है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही ये भक्ति है। अपने मन की प्रसन्नता से जो कुछ भगवान की सेवा करते हैं वो भक्ति नहीं है। अब इसको उदाहरण देकर के समझाता है। महाराज दशरथ जी ने राम को वनवास दिया, उनके साथ साथ में सीता मां और लक्ष्मण जी वन में अभिनंदन किए, चित्रकूट में पधारे। इधर भरत जी को पता लगा अपने ननिहाल से आए और सुना जी हमारी मैया के कारण हमारे पिता मारा गए हैं, और हमारे रामचंद्र जी जैसे भाई सीता और लक्ष्मण जी के साथ में वन में चले गए, बड़ा भारी दुख हुआ। कह के घर में गए, पूछा मैया पिताजी कहाँ हैं, आज मेरी अगवानी करने के लिए नहीं आए, तो वो मर गए। और भैया कहाँ हैं राम, वनवास में गए। किस लिए, मैंने तुम्हारे लिए ये मंगा था वर, ये भक्त को कितना 14 महीने का वनवास हो, 14 साल और भरत राजा। सुनते ही राम को बुलवाया और राम को लिए आदेश दिया और उनको वनवास के कपड़े पहनवा दिए, ऋषि मुनि जैसे। वन के में जाते ही मारा दशरथ हाराम 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 कर करके भगवान सीता, भरत जी अपनी मैया को मारने उठे। फिर सोचा जी राम अप्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए मारा तो नहीं। बोले जी आज से तुम्हारे और हमारे बीच में बेटा और मैया का कोई संबंध नहीं रहा जीवन भर, अब आप राज रानी हैं, भरत की मैया नहीं। आज कहीं महारानी और ये कह करके सारी अयोध्या के लोगों को लेकर के, वशिष्ठ को लेकर के और अंत में सब माताओं को लेकर के चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट पहुंचने पर महाराज वशिष्ठ के पास भी गए, महाराज आप गुरु हैं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन राम नहीं कर सकते, इसलिए आप आदेश दीजिए कि आप लौट करके अयोध्या जाए और राज्य काज संभाले, नहीं तो भरत जीवित नहीं रह सकता। ना नहीं तो बेटा मैं कैसे काटूं, वो तो बड़ा भारी धार्मिक व्यक्ति है, पिता के वचन को शब्द करने के लिए जा रहे, मैं उसको कैसे कोई अपने पिता के बात को दूर कर दू, उल्लंघन कर दू, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर बहुत चेष्टा की, एक बात करो उनके बदले में तुम वन में चले जाओ, वो लौट जाए, ये तो मैं बहुत राजी हूं। अच्छा तो जाओ देखो, और राम मानता है तो तुम जाओ। नहीं हुआ, आंख बंद मत करो, कोई आंख बंद मत करो, सुनो इसके लिए बुलाया है, कोई भी मत सो। तो क्या कह रहा है भरत जी, अब फिर गए उनके यहां कौशल्या माता के, मैया तेरी बात राम नहीं ठुकरा सकता, आप जाकर के उनसे कहिए अयोध्या चलना है चलो। उन्होंने कहा जी मैं कैसे कहूं, उसके पिता ने और मैया दोनों ने मिलकर के ये आदेश दिया है, मैं कैसे, मैं तो केवल माता हूं। और वो कैकेयी और माता और पिता महाराज दशरथ दोनों ने मिलकर के दिया है, मैं ऐसा नहीं कर, क्यों भैया मैं झूठ, मैं गलती रास्ते पर हूं। उन्होंने कहा नहीं तुम ठीक हो, किंतु तुम्हारा प्रेम उसके ऊपर में है ये ठीक है, किंतु वो भी तो धर्म की रक्षा करने वाला है, सत्य को उसे कैसे वो हटे, मैं कैसे इसके लिए कह दूं। उन्होंने भी नहीं कहा। तो सीता जी की मैया सुनैना के पास में गए, महाराज जनक कल सभा करेंगे और उसमें निर्णय करेंगे ये क्या होना चाहिए। सीता का दुख तुम देखना चाहती है, सीता बन बन में भटक रही है, कितना कष्ट पाएगी पा रही है, तुम हे मैया आप कह दीजिए महाराज जनक को, ये निर्णय दें कि राम अयोध्या को। उन्होंने कहा अच्छा मैं महाराज जनक से, वो हमारी बात मानेंगे कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, किंतु मैं उनसे कहूंगी। दूसरे दिन सभा हुई, वशिष्ठ महाराज ने कहा, वो ब्रह्म ऋषि हैं, उन्होंने कहा इस समय अयोध्या का राज्य या उसकी नाव डूब रही है, पानी में डगमगा रही है, नैया को खेने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं सत्य और असत्य का निर्णय मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से राम को हमने पाला पोसा है, उसको शिक्षा दी है, उसके प्रति मेरी ममता है, इसलिए मैं भी निर्णय नहीं दे सकता। हाँ, महाराज जनक हैं, वो ब्रह्मर्षि, ब्रह्म को अनुभूत करने वाले ऋषि, संसार से परम विरक्त हैं, संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है, इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि यह नाव डूबने से बचाए। यह सुनकर के महाराज जनक अपने इष्ट देव को प्रणाम किया। उनका इष्ट देव माने गुरु शंकर जी ने उनको प्रणाम किया, ध्यान लगाया, फिर प्रणाम करके बोले, यदि मैं अज्ञानी हूं तो भी शंकर जी जो मुझसे बुलाएंगे मैं कहूंगा। और इसके बाद में बोले, देखो आप लोग सब सुनिए, एक तरफ में मैया बैठी थी, राजा वहां अयोध्या के सब लोग पूर्वासी बैठे थे, दूसरी ओर सब सन्यासी ब्रह्मचारी और ऋषि मुनि बैठे थे, एक तरफ में राम बैठे थे, दूसरी तरफ में भरत बैठे थे, ऋषि महर्षि वहां पर थे। उस समय में महाराज जनक ने कहा, मैं सबको प्रणाम करके अपना अभिमत बतलाता हूं, भरत की जीत है, पर जो चाहता है राम को करना होगा। क्या जीत हुई? भरत जो चाहता है उसको राम को करना चाहिए, क्यों? इसका प्रेम बहुत बड़ा है, अथाह समुद्र है, और प्रेम कोई नियम टियम नहीं जानता। प्रेम नदिया की बहे उल्टी धार, प्रेम नदिया की। कृष्ण टेढ़े हैं, उनकी नजरिया टेढ़ी है, उनकी मथुरा नगरी टेढ़ी है, वृंदावन टेढ़ी है, यमुना टेढ़ी है, उसकी बंसी भी टेढ़ी है, उसकी गोपियां तो और टेढ़ी हैं। ये प्रेम है ना, प्रेम की ऐसी वो रीति थी, नियम कानून की परवाह नहीं प्रेम करता है। प्रेम कहां लग जाए कोई ठीक नहीं। अरे काले कृष्ण के प्रति इतनी सुंदर गोपियों का प्रेम कैसे लग गया? तो ये प्रेम कुछ नहीं जाता, अर्थात ये अनंत है। किंतु राम का जो धर्म धर्म है, उसकी सत्यवादिता है, वो कैसे हिमालय पहाड़ की तरफ, एवरेस्ट पहाड़ की तरफ अचल अटल है, भले ही पानी में डूब जाएगा कि तो टस से मस नहीं हिलेगा नहीं। ये राम के धर्म की ये सीमा है, वो धर्म की सीमा है, ये प्रेम की सीमा है। इसलिए वो डूब जाए तो वो भी तो हटेगा नहीं। इसलिए भक्ति की, प्रेम भक्ति में कोई नियम नहीं होने पर भी उसकी कोई एक नियम है, उसका क्या है वो? भक्तों को ये देखना चाहिए, भरत को ये देखना चाहिए जो राम क्या चाहता है, राम किस में प्रसन्न है। अयोध्या लौट जाने में राम प्रसन्न है या वनगमन में प्रसन्न है, इस चीज को देखे भरत और पूछे जी भैया आप किस में प्रसन्न है, और उसको आरोप कर। सेवक का धर्म बहुत कठोर होता है, अपने समस्त बातों को विचारों को छोड़ करके अपने इष्ट देव की सेवा करनी होती है। इतना सुनते ही महाराज भरत राजा जनक के चरणों में गिर गए, यथार्थ आप मेरे गुरु हैं, अब तक मैं अपनी बात सोच रहा था, जो राम आने से मुझे खुशी होगी, सुखी होऊंगा मैं, किंतु मेरी भूल दूर हो गई, आंखें खुल गई, इसलिए इनके चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करता हूं। अब राम के पास में गए और उनको प्रणाम करके बोले, भाई आप क्या चाहते हैं? जो आपका है खुशी हो वो मुझे करना चाहिए, तो इसमें क्या बात है? राम बोले, महाराज जनक ने तो कह दिया कि तुम्हारी जीत हो गई, तो तुम्हारी जीत है, मैं हार गया, मुझे अयोध्या लौट करके राज्य लेना है। तो मैंने राज्य लेना स्वीकार कर लिया, तो फिर हम ले आए हैं अभिषेक की वस्तु में, जरा ठहर जाओ, जरा ठहर। मैंने राज्य ले लिया, किंतु एक बात करो, जैसे मेरी भी मेरा भी धर्म रह जाए, तुम्हारा प्रेम भी रह जाए, और महाराज जनक की बात भी सत्य हो जाए। वो क्या, मेरे प्रतिनिधि होकर अयोध्या में जाकर, और तुम वहां का राज्य काज संभालो, ये मेरा आदेश है। मेरे प्रतिनिधि होकर के, राजा तो मैं हूं, राज्य स्वीकार कर लिया, किंतु पिताजी के वचन को रखने के लिए हम 14 वर्ष के बाद में एक सेकंड की देरी नहीं कर करके आ जाएंगे राज्य ले लेंगे। तब तक तुम मेरे मंत्री प्रतिनिधि होकर के इसको संभालो। जी उनका आदेश मान लिया, बोले जी अपने चरणों की खड़ाऊ दे दे दीजिए, और उन्होंने अपने सिर पर लिया और नंदीग्राम में लौट करके अयोध्या नहीं गए। अयोध्या के पास ही 10-12 मील की दूरी पर चित्रकूट जैसा स्थान, वहीं पर गए, और वहीं पर राम जैसे वन में जंगल में रहते हैं, वैसे वन जंगल में रहने के लिए गए राज्य को करने के। और जैसे उन्होंने अपनी सब पद सब को छोड़ दिया था, ऐसे छोड़ करके फल मूल खाते थे, अपना केश बांध दिया, सवारना और काटना सपना ये सब दूर कर दिया केश, और राम की तरह में वनवासी बन करके दुख कष्ट के साथ में वहां पर रख करके उनकी खड़ाऊ को राज्य सिंहासन पर पथरा दिया, और राम जैसे उसकी सेवा करते उसका आदेश लेकर के राज्य का संचालन करते। यह है भक्ति, इसलिए अपने लिए मत करो, कृष्ण के लिए, और दिन रात वो भक्ति नैरंतर्यमयी हो, अपने लिए नहीं किसी कारण से हो, कृष्ण के लिए हो, तो वो यथार्थ भक्ति है, अन्यथा भक्ति नहीं है। कीर्तन कर दो, आप लोग भी कीर्तन करने वाली कोई है ना, आ जाओ आगे, आज ही तुम ही आज करो, कृष्णदास जी पीछे, और तुम भी अपना भजन कभी कभी सुना।
Okay.